पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण 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 नारायण।
संसार में कई तरह के बल हैं, तन बल है, धन बल है, विद्या बल है, योग्यता का बल है, वर्ण का बल है, आश्रम का बल है, साधन का बल है, कई तरह के बल है और बेईमानी का भी बल होता है। जो साफ निर्बल होता है कोई बेईमान होता है, निर्बलता की ये पहचान है। रवि लोग बल मानते हैं, बल से काम करते हैं, सहायता कर जो करता है उसमें, परंतु सबसे बढ़कर बल भाइयों बहनों परमात्मा का है। उसके सहारे के समान बल कोई दूसरा है नहीं। दुर्योधन के पास बहुत से बल थे, युधिष्ठिर महाराज के पास धर्म का बल था, सत्यता का बल था। तो उनकी 11 क्षोणी सेना थी और 100 भाई थे, वे सब समाप्त हो गए। इनकी 7 क्षोणी सेना थी और 5 भाई थे, 5 में एक भी नहीं मरा, उनमें 100 में एक भी नहीं बचा। और 7 अक्षरणी सेना भी अंत में 1 अक्षरणी सेना बच गई, जो रात्रि में कृतवर्मा ने आदि मिल करके सोते सोतों को मार दिया। भाई बहनों से सबसे कहना है, आप भरोसा भगवान का रखो, आश्रय भगवान का रखो। आज प्राय झूठ कपट बेईमानी का आश्रय रखते हैं, और जहां तक बात होती है तो मैं सुनता हूं कि आजकल झूठ के बिना काम नहीं चलता, कपट के बिना, काले बाजार के बिना काम नहीं चलता। तो ये एक इष्ट हो गया है, हे झूठ कपट देवता, हे काला बाजार, तुम कृपा करना हमारे पर, ये उनका इष्ट हो गया है। धनी आदमी ने तो बहुत विशेषता से दे दिया, नाराज नहीं होता भाई, नाराज मत होना, बात ऐसी हमें दिखती है, ऐसी मैं सुनता हूँ, इस वास्ते कहता हूँ, बहुत गड़बड़ी करी है, इसी से हम लोग दो पा रहे हैं। अगर धर्म का आश्रय लेते तो इष्ट भगवान का रखते तो निहाल हो जाते। जिन जिन लोगों ने भगवान को इष्ट माना है, धर्म का आश्रय लिया है, वे अच्छे अच्छे संत हो गए, महात्मा हो गए, बड़े ऊंचे पद में पहुंच गए, लोक में परलोक में उनकी ख्याति भी हो गई है, ऊंचे पद को भी प्राप्त हो गए हैं। तो आश्रय तो एक भगवान का ही है, बढ़िया है। आश्रय में तो धर्म हो और इष्ट परमात्मा का हो तो फिर हमारी पराजित नहीं हो सकती, सदा हम विजय हो सकते हैं। बहुत बड़ी भारी हमारी ये कमी है, आप कृपा करो, तीर्थ में रहने वाले हो, वृंदावन वास करते हो, अपना कल्याण चाहते हो, यहाँ रहते हो, तो ये आप लोगों के लिए बड़ी सुगम बात है, बड़ी सरल बात है, सीधी बात है। भगवान का आश्रय को जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित ये ते ब्रह्म तद्विदो कृष्णम अध्यात्मं कर्म चाखिलम साधि भूतारी दैव माम साधि यज्ञ ये विदो प्रयाण काले विजमान ते विदुर योग से सातवां अध्याय के अंत में दो श्लोक है, 29-30। सातवां अध्याय के आरंभ में भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि मैं विज्ञान से ज्ञान कहूंगा और समग्र रूप का वर्णन करूंगा सातवें अध्याय में। और जगह समग्र बात ऐसी नहीं आई कि मैं समग्र रूप का असंशयम समग्र माम यथा ज्ञात सुनू मेरे की समग्र रूप, तो समग्र रूप है ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ, ये सब बातें बताई। वो ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं, संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं, अधियज्ञ अधियज्ञ अधिदेव अधिभूत के सहित मेरे को जान जाते हैं और अंत में मेरे को ही जानते हैं अर्थात मेरे को ही प्राप्त होते हैं। तो ये जितने संप्रदाय हैं, जितने जितने बढ़िया बातें हैं, उसमें भगवान समग्र रूप का ही वर्णन है। ब्रह्म की बात बताई, वो ब्रह्म की बात छह बातों में एक बात है, अध्यात्मवाद जो कि ज्ञान मार्ग है उसमें अध्यात्म बात है, योग मार्ग है उसमें कर्म की बात है, अधियज्ञ अंतर्यामी है परमात्मा का नाम है, अधिभूत जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भौतिक सृष्टि है, अधि अधिदेव ब्रह्मा जी की सृष्टि थी अधिदेव है, तो ये संपूर्ण मिलकर के परमात्मा का स्वरूप है। आप भावना परमात्मा की रखें, वो वास्तविक चीज है। सांसारिक चीजों का जो आश्रय है, ये आश्रय बड़ा खतरनाक है, नाशवान है और नाश करेगा, ये स्वयं भी टिक नहीं सकता, नाश हो जाता, उसका सहारा क्या करेगा। ये धन का सहारा है, अपने विद्या बुद्धि वर्ण आश्रम योग्यता आदि का आश्रय है, ये कितना दिन चलेगा, ये चलने वाला नहीं है। स्वास्थ्य भगवान कहते हैं जरा मरण मोक्ष आये माम आश्रय, मेरा आश्रय लेकर जो यत्न करते हैं, प्रभु का आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वो सब जाट जाते हैं। आश्रय भगवान का रहे हो, गुरु का आश्रय लेते हैं, संतों का आश्रय लेते हैं, वो आश्रय भी पक्का नहीं है, पक्का आश्रय भगवान का है। गुरु इस वास्ते बड़े हैं कि वो भगवान की बात बताते हैं, भगवान की तरफ ले जाते हैं, इसलिए गुरु की ही महिमा है। पांचवे स्कंद महात्म गुरु न स्यात्, वो गुरु गुरु नहीं जो भगवान में न लगावे, वो पिता पिता न स्यात् जो पिता नहीं है जो भगवान में न लगा दे, वो पत्नी पत्नी नहीं जो भगवान में न लगावे, वो पिता पिता नहीं जो भगवान में न लगावे, वो माता माता नहीं जो ऋषभ देव जी अपने पुत्रों की पुत्रों को उपदेश देते हैं, हमारो नभोज ये समय मृत्यु में जो मृत्यु से हमारी रक्षा न करे, वो हमारे संबंधी माँ बाप भाई संबंधी कुटुम्बी गुरु वो कोई नहीं है। जो भगवान में लगा दे वही हमारे माँ है बाप है भाई है संबंधी है कुटुम्बी है रक्षक है मालिक है, जो कुछ कहा जाए वही है जो भगवान के सम्मुख कर दे। और भगवान से विमुख करने वाली धन संपत्ति वैभव ये किसके था, राक्षसों के हुआ है, विशेष असुरों के राक्षसों के पास ये होता है। आज भी जो भजन नहीं करते और धन प्रति है उसका वर्णन आया है यक्षवित्तो पतत्यधा, वे यक्षवित्त है, मानो यक्षों के पास में धन रहता है, उनके काम नहीं आता, दुनिया के काम नहीं आता, ऐसे धनी है, वे धनी यक्ष वित्त है, यक्षों के समान वित्त वाले, पतत आधा आधा पतत, ऐसा आया है भागवत में। विश्वास दे भाई, धन का आश्रय है, आश्रय में धन का उपयोग करो। आप धनपति कहलाते हो, आप धनपति हो, धनदास हो, इसकी परीक्षा हो जाए तो पता लगे। धन के कारण आप बड़े होते हो तो ये धन की दासता है, धनपतिपना नहीं है। आपकी इज्जत धन होने से है तो बड़ा धन हुआ, आप बड़े नहीं हुए। अगर आपके पास धन न रहे तो आप बड़े नहीं रहकर छोटे हो जाते हो। तो आप विचार करो कि आप मनुष्य जीते जी परमात्मा का खास अंश होते हुए जड़ की दासता करते हो, बड़े दुख की बात है। इस वास्ते सज्जनों, दास भगवान के बनो, जो निहाल कर दे सदा के लिए। और उनका बनना क्या है, पहले की बात को याद करना है। भगवान कहते हैं ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव मेरा अंश है। तो आप परमात्मा के साक्षात अंश हो, धन के अंश नहीं हो। ऐसे ही वर्ण में आश्रम में जो ऊंचे है, वर्णों में ब्राह्मण ऊंचे है, बड़े अच्छे बड़े आदरणीय है। भगवान ने ब्राह्मणों का बहुत आदर किया है। भागवत में आया है कि जो ब्राह्मण है उनके हित के लिए अहित करने वाली मेरी भुजा हो तो मैं भुजा को काट दूं। और ब्राह्मण है, विद्वान है, चाहे मूर्ख है, वो मेरा शरीर है। ब्राह्मणों के मुख में देने से मैं जितना प्रसन्न होता हूँ, अग्नि के मुख से देने में प्रसन्न नहीं होता। और लात मारी उस भगवान भगु चिन्ह अपने धारण करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों की महिमा की है। परंतु जहाँ भक्ति की महिमा हुई है वहाँ यह ब्राह्मण की नहीं है। तो वर्णों में ब्राह्मण और आश्रमों में संन्यास आश्रम बहुत ऊंचा माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्राह्मण मुख है और सन्यासी सिर है भगवान का। ऐसी बात विशेष होने पर भी अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो सज्जनों कुछ भी नहीं है। रामायण में जो तुलसीकृत रामायण मानस रामायण है, जिसका प्रचार है, सब आप जो जानते हो पढ़ते हो, उसमें आया है कबंध। आया है कबंध, भगवान जा रहे थे वन में, पिछल रहे थे, तो उस समय में कबंध आया है, बड़े लंबे लंबे हाथ में सब में लपेटते तो खा जाता था। सीता जी को पकड़ लिया इन हाथ में, ऐसे चिल्लाने लगी सीता जी, इस तरह से सबको पकड़ दिया। राम जी को ये पकड़ खा जाता था, उसका भगवान ने बध किया। और साप था ब्राह्मणों का, विश्वास थे, उसने सामने कहा मेरे को ब्राह्मण का शत्रु सुहाता नहीं, वह ब्राह्मणों की महिमा कही है, बड़ी विशेषता से कही है। तो उसी के रामायण में जो मानस रामायण है उसमें वहां कह करके, अगर ये चलते चलते ही ताए तेज गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पग उधारा। चौपाई दूसरे नहीं, एक ही चौपाई में उसको उदार भगवान ने गति दी और शबरी के आश्रम में पधारे। शबरी में क्या विनती थी, क्या उसमें अधिक बना था, भगवान की भक्ति थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, जानती कुछ नहीं थी। उसने जो अपना खुद परिचय दिया है उसे ये मालूम होता है क्या थी वो। पर राम जी वहां पर गए, एक गुजराती पद में आता है, थाय से रे वालो भक्ति तड़े बस थाय से। भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। मोटा मोटा मोने जनना आश्रम मुकीने, मोटा मोटा मोने जनना आश्रम मुकीने, शबरी ने घेर जाय छे रे, शबरी ने घेर जाय छे। वे ऋषि मुनि कहते महाराज हमारे पधारो, इधर पधारो, कि मैं उस समय नहीं है, समय में नहीं है। शबरी किधर रहती है, कहाँ रहती है वो बताओ मेरे को। तुम वहां गए गोस्वामी जी महाराज उस कबंद को ताय दे जगत राम उदारा शबरी के आश्रम पर उजारा। सोपाई भी दूसरी नहीं की, ये सोपाई की समर्पित करते, अगर दिल्ली सोपाई चले उस सोपाई में शबरी के पास हूं। शबरी जात की शबर थी, भील बहुत कुरूप थी, भीलों में भी बहुत कुरूप, उसका ब्याह नहीं होता था। तब पिता ने कहा कि भाई मेरा कन्या है ये कुंवारी रह जाएगी, तो एक भील के लड़के को कहा कि तुम आओ रात में ब्याह कर, रात में ही चले जाओ, हमारे बड़ी खतरा है, यहाँ पर विरोध है, ऐसे कर उसको ब्याह दिया और रात में ब्याह कर रात में ही रवाना कर दिया। दंडक बन में जाते जाते उसने अपनी स्त्री की तरफ देखा कि पीछे आ रही है स्त्री, आ रही देख तो देखा तो हाँ भागा, अरे कोई डाकर आई खा जाएगी मेरे, मेरी स्त्री को तो खा गई और मेरे को खा जाएगी, ऐसे डर कर भाग गया। अब वो कहाँ जाओ, पिता घर से तो आ निकल गई, पति जो भाग गया तो दंडक बन में रह गई बेचारी वाई, भोली भाली सीधी शादी थी, ऋषि मुनियों के जाती तुम्हें ताड़ना करते, तेरी छाया पड़ जाती हो, बस उधर निकलो यहाँ से, डरती बहुत थी। लकड़ियां सूखी सूखी ला करके ऋषियों के आश्रम में रख देती थी, ये अग्निहोत्र करे रसोई बनावे जो कुछ चाहिए करती, ईंधन पात किरात मिटाई, किरात व्रत यही है, ईंधन पात लकड़ी रख दे पास। ऋषि मुनि पंपा सरोवर में स्नान करने को जाते थे तो वो रास्ता उस डगर बहारते थे, कांटा खर्चा कोई न रह जाए, और वो जमीन कड़ी कंकर रहते थे उसमें कोमल बालू बिछा देते थे रात्रि में, दिन में तो वो डरा दे धमका दे, डरती बहुत थी कि किसी संतों का कोई मेरे द्वारा अपराध न हो जाए। मतंग ऋषि थे बूढ़े, बड़े संत महात्मा थे, उनको दया आ गई, तो उसने कहा बेटा तुम यही रहो हमारे आश्रम में, रह जाओ यही, डरो मत, ऐसे आश्रम दिया। अब माता पिता गुरु संबंधी बड़े मतंग ऋषि थे, उन्होंने दया कर दी तो मतंग ऋषि की निंदा करी, ऋषियों मुनियों ने देखो अछूत है, उसको महाराज ने आश्रय दे दिया, ठीक नहीं किया, बड़े संत थे, दया आ गई, बेटी घबराओ मत यहाँ ठहर जाओ, तुम यही रहा करो, उनके आश्रित रहती थी। जब वे ब्रह्मलोक जाने लगे, बूढ़े थे शरीर तो जाने वाला ही होगा, तो ये घबरा की रोने लगी, आज माँ बाप सब मर रहे सभी, कोई आश्रय देने वाला नहीं। तो मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी तुम घबरा मत, श्री रघुनाथ जी महाराज आवेगे, तेरे यहाँ भगवान आवेगे पधारेंगे। तो वो वचन याद था, शबरी शगुन मनावे मेरे घर राम आवेगे, तो शगुन मना रही है। तो राम जी उनके घर पर गए, तो उनमें क्या थे, भक्ति थी, भगवान का वचन था, शास्त्र का सहारा नहीं, पीहर का सहारा नहीं, कुटुंब का ही सहारा नहीं, अपनी जाति का भी सहारा नहीं, कोई सहारा नहीं। महाराज ऋषि के आश्रय गए, ऋषि ने नाम बता दिया, भजन करो बेटी, भगवान का भजन करो, याद करो। तो संता का और भगवान का सहारा था, तो भगवान का सहारा होने शबरी का बड़ा नाम हो गया। जब मिली है शबरी तो रातों जगती, पत्तों में खनखनाहट होती, कोई जानवर चलते तो एकदम झिझ उठती, भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए, फूल बिछा दिए बहुत दूर तक, सुन सुन कर बेल लाती थी। तो रामायण में तो कंद मूल फल राम कंद मूल फल लाएंगे, दिए राम कहान, प्रेम सुगत प्रभु पाए बारम बार बखान, कंद मूल फल अंकुर ये होते हैं। कंद होता है, मूल होता है, फल होते हैं, अंकुर होता है, ये ऋषियों का भोजन होता है। मूल तो वो होता है जैसे मूल ही है इस तरह से एक लंबी ये होते वो मूल होता है। कंद वो होते हैं शकरकंद की तरह, आलू की तरह, जो भीतर फैल जाते हैं बाहर पत्ते रहते हैं वो कंद होता है। और फल जो वृक्षों के लगते वो होते हैं। अंकुर जो कोंपले निकलती है वृक्षों की वो होती है, अंकुर पैदा होते हैं, वे अंकुर होते हैं। इनसे वे निर्वाह करते थे ऋषि मुनि, तो वे राम जी को ला करके दिए। पर संतों के पदों में तो आता है वो झूठे पेड़ लाई झूठे, और सबर जाति में झूठा और कुछ होता नहीं, वो तो सीधी सारी बात है। अपने वंश के अनुसार, संस्कार के अनुसार वो फल लाती, फल जो वो चखते थी बड़ा मीठा होता, वो बोल राम जी के लिए रखते, ये मीठा है राम जी को खिलाऊंगी। ऐसे वो कंद मूल फल दी अमीय सम, कंद मूल फल अमीय सम दिए राम का, अमृत के समान थे। भगवान को मीठा लगता है प्रेम, भगवान वस्तु के भूखे नहीं है, प्रेम के भूखे हैं। भगवान के प्रेम की ही तृप्ति होती नहीं, प्रेम सदा ही भूखा रहता है, प्रतिक्षण वर्धमानम। भूखा अगर न रहे, कम न रहे, तो प्रतिक्षण बढ़े बढ़े कैसे, तो प्रेम बढ़ता ही रहता है, अनिर्वचनीय है। नारद सूत्र में लिखा है ये प्रतिक्षण वर्धमानम अनिर्वचनीय है, जिसका निर्वचन नहीं कर सकते, ऐसा स्नेह था। मतंग ऋषि की कृपा से भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई थी। भगवान मीठे लगते, भगवान का नाम मीठा लगता, चरित्र मीठे लगते, गुण मीठे लगते। इस तरह का जीवन बिताने वाली सबरी, जब रघुनाथ जी महाराज आए बहुत दूर तक फूल बिछा देती है, भगवान पधारेंगे उनके पैरों में कोई कंकर न गड़ जाए, ये न हो जाए, ऐसे। तो भगवान सबरी के आश्रम पर उधारे, सबरी के आश्रम में आए। सबरी का आश्रम कहना तो वो आश्रम श्रमणा गया है, संस्कृत में उसका नाम श्रमणा है, आश्रम वासी है वो आश्रम। आश्रम चतुर्थ आश्रम होता है सन्यासी का, वो आश्रम वाली थी, ऐसी उसी महिमा थी। तो उसके यहाँ भगवान पधार रही, आज बड़ी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, बड़ी आनंदित हो गई। हर एक मनुष्य को मन चाहिए चीज मिलती है तो प्रसन्नता होती है, और जिसके मन की चाहना भगवान हो और भगवान मिल जाए वो सर्वोपरि चीज है। उसके समान कोई वस्तु है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं, होगी भी नहीं कोई ऐसी वस्तु। प्यारी थी नहीं, प्यारी है नहीं, प्यारी होगी नहीं, प्यारी हो सकती नहीं, ऐसी ऊंची श्रेष्ठ कोई वस्तु है नहीं। तो बड़ी खुश हुई, बड़ा प्रेम आया उसको। पंपा सरोवर से तुमड़ी भर ला करके महाराज के चरण धोए और बैठाए, और फल देते कंद मूल फल लाल भगवान के अर्पण किए। बेरों की महिमा आती है, बेर भगवान से दिए और प्रेम सहित प्रभु पाए। प्रेम सहित ये प्रेम में भरी हुई चीज भगवान को प्यारी लगती है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिव्रतम अश्नामी प्रयतात्मना, गीता में आता है। पत्र पुष्प फल जल यो मैं भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिव्रतम, भक्ति दो बार शब्द आया। वो भक्ति से देता है और वो भक्ति पूर्व दिया हुआ जो उपहार है मैं अश्नामी, पत्ता होता है ना वो खाने का नहीं होता है, पर पत्ते भी खाए भगवान। पत्रम पुष्पम, पुष्प खाने नहीं होते जैसे गोभी आदि होते हैं, पर ये पुष्प सूंघने की चीज होती है और फल खाने की जल पीने की चीज होती है। गीता ने कहा तो पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भगवान के प्रेम से अर्पण करता है तो भगवान कहते अश्नामी खा लेता हूँ, पत्ता वो फूल हो। जैसे भोला बालक है उसके सामने जो चीज आए पत्र के मुंह में धर देता है पत्र, ऐसे भगवान प्रेम में इतने भोले हो जाते हैं अपने ऐश्वर्य को अपने विज्ञान को भूल जाते भगवान। विद्रोही कहते हो ना, वो गिरी गिरी तब देव गिराई और छिलका दे तो शाम को मानी छिलका खाते। सवेरे मैंने सुना कि भगवान आए बाहर से आड़ा खटखटाया कि मैं कृष्ण हूँ भूखा हूँ, स्नान करती थी महाराज वैसे ही, और वस्त्र पहनने याद नहीं आया, कन्हैया आ गया कन्हैया कन्हैया। जैसा सवरी के प्रेम ऐसा ही प्रेम दुरानी के था, आ गए बैठ के भाई बस पीढ़ा धरा तो पीढ़ा उल्टा धर दिया, चार तो पागे रे भगवान पांच हो गए देखने और बीच बैठे भगवान दे रही है छिलका दे रही है घी फेंक रही है। ये तो याद है कि इसमें एक चीज खाने की एक चीज डालने की है, उल्टा हो गया ए भगवान गिरी खाने लगे। सबरी को जब याद नहीं रहा कि मैंने मजुरानी को याद नहीं रहा कि मैं क्या दे रही हूँ, तो भगवान को याद नहीं कि मैं क्या खा रहा हूँ। ये यथा प्रपद्यंते तांस्तथे भजाम्य भगवान का स्वभाव है। भगवान ने क्या किया, दरवाजा खोला है, भगवान ने अपना पीताम्बर उसके ऊपर रख दिया, वो पीताम्बर ऊपर था शरीर के। विदुर जी आए तो कर क्या रही हो, कपड़े ही तुम्हारे पहने हुए नहीं है, क्या करती हो। तब बड़े बड़े उठी विदुर जी महाराज, फिर हाथ धोकर के केला धोकर केला साफ फिर डरने लगे तो कहे कृष्ण जी सुनो सुन विदुर जी वो स्वाद नहीं है, वो स्वाद नहीं है, छिलकों का स्वाद गिरी में कैसे वो स्वाद, परंतु वो स्वाद गिरी का नहीं है, वो प्रेम का स्वाद है। तो प्रेम की चीज भगवान को अच्छी लगती है, इस वास्ते ये तत्वेता संत हुए हैं। उन्होंने ये बात किया था, तत्वेता त्यों लोक में भोजन किए अपार, एक शबरी एक विदुर घर रुच पायो दो बार। कृष्णा अवतार में रामा अवतार में पूरा एक बार भोजन मिला भगवान को तो बढ़िया, रामा अवतार में तो शबरी का और कृष्णा अवतार विदुरानी का, ये भोजन भगवान को बढ़िया लगा। तत्वेता त्यों लोग में भोजन किया अपार, सब भगवान के भोग लगाते हैं अर्पण करते हैं मंदिरों में जगह जगह, और सज्जन भगवत भगत तो सदा ही भगवान के अर्पण करके ही पाते, जो मिले भगवान के भोग लगा पाया करते हैं। तो भोजन बहुत किए भगवान ने, गिनती नहीं इतना की, पर एक शबरी एक विदुर घर रुच पायो दो बार। एक बात याद आ गई, कह देता हूँ बीच में आ गई, याद आ गई। भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज जब राजगद्दी पर विराजमान हो गए, उस समय महाराजा जनक जी ने बुलाए, पहले तो राजकुमार थे ना, तब तो राजा हो गए बुलाए, साथ में बानर थे भालू थे और अवधवासी भी थे ही, तो वहां ठाकुर जी की पहुनाई की। अब बोलो सीता जी की माता सुनैना जी अपने दामाद के लिए गए, जहाँ दामाद कृष्ण भगवान बेटी जहाँ सीता है, सुनैना जी प्रेम भर गए एकदम मस्ती। इसे तो दशरथ जी प्रेमी थे और कौशल्या ज्ञानी थे, और उस जनक जी महाराज तो ज्ञानी थे, सुनैना जी के प्रेम था, ये और कितना उलट पुलट थी बात। तो सुनैना जी बस कितना उत्साह से भोजन बनाया, अब क्या क्या बनाऊ क्या क्या खिलाऊ, आज बहुत मन में आई है, सब रसोई बनाने लग गई, आप भी बनाते दासी भी बनाते, सीता जी भी साथ में ही थे, तो सीता जी के भी बनाया, बनाओ भाई भजन भोजन बनाओ, ठाकुर जी का आज भोग लगाना है। बहन के भाई सास के जवाई बहुत प्यारा होता है, मीठा होता है, सास को जवाई प्यारा लगता है, अब जवाई जाओ भगवान बेटी जाओ सीता, उसके आनंद का क्या ठिकाना है। भोजन बनाया तो भोजन परोसा गया, बढ़िया थाल में रखा, तो ससुराल ठहराने सखियां पास में हो गई। हवा करती है, कहती है कि महाराज कौन सा भोजन बढ़िया है, इनमें बढ़िया भोजन कौन सा है, ये प्रश्न कर दी है। मन में भाव था कि सीता जी की बनाई हुई चीज की प्रशंसा करेंगे तो हम कहेंगे तुमको घर की चीज अच्छी लगती और अच्छी लगती है, और ये प्रशंसा कर देंगे दासियों के महारानी की बनाई हुई चीज की, कहते इनको घर की चीज तो अच्छी लगती, मुफ्त में दूसरों को दूसरा खाते हैं, ऐसे हम कहेंगे, ऐसा उनके मन में विचार। अब ठाकुर जी को महाराज बढ़िया कौन सा भोजन, बढ़िया इनमें बढ़िया भोजन कौन सी चीज बढ़िया बनी है, तो ठाकुर जी महाराज तो बोलने में होशियार है ही, कल सुना था नहीं, ऐसा जवाब दे सब चुप हो जाए, तो भगवान ने चख सब चीजों चख क्या ठीक है, सब भोजन भी ठीक है, बढ़िया भोजन, बढ़िया भोजन तो हमारे बनवास में मिला था, शबरी के या भोजन मिला वैसी बढ़िया चीज नहीं है महाराज, बढ़िया कौन सा भोजन, बढ़िया इनमें बढ़िया भोजन कौन सी चीज बढ़िया बनी है, तो ठाकुर जी महाराज तो बोलने में होशियार है ही, कल सुना था नहीं, ऐसा जवाब दे सब चुप हो जाए, तो भगवान ने चख सब चीजों चख क्या ठीक है, सब भोजन भी ठीक है, बढ़िया भोजन, बढ़िया भोजन तो हमारे बनवास में मिला था, शबरी के या भोजन मिला वैसी बढ़िया चीज नहीं है, हम क्या कहें, कोई भी चीज ऐसी बढ़िया नहीं है, भोजन तो वहां मिला वो पाया था, तो ससुराल में वहां पर राजी करते भगवान बोलते हैं, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भाई जब जहां पहुनाई तहां कोई सबरी ने फलन की मर्सी माधुरी न पाई, कौशल्या मैया कितने प्रेम से देती थी, माँ का दिया हुआ भोजन तो बहुत ही प्यारा होता है, सुते हर एक संतान के लिए, माँ कौशल्या रघुनाथ जी मदद करते हैं तो वो भोजन दे तो कितना प्यारा है, घर में उसे गुरु गृह पढ़ने हो गए अरुंधति जी माता बड़े प्यार से दुलारती थी, भोजन देती थी, बहुत प्यार करती थी, गुरु माता है महाराज, गुरु पत्नी होने से हमारी माता जी से पढ़कर गुरु माता, उसका दिया हुआ हाथ प्रेम से वैसा भोजन था, गुरु घर गुरु गृह प्रिय सदन अपने मित्रों के सदनों वगैरह पर जो बचपन में खेलते थे साथ रहते थे वे भी बड़े बड़े शेर धनी बन गए आदमी, वे भी बुलाते हैं कि महाराज को हम घर में बुलाए हमारा घर पवित्र करे, तो वहां करे मित्रों के गांव पर, अरे मित्रों की माताओं को कितना आनंद होगा, आज गांधी महाराज हमारे सम्राट राजा साहब आए हैं, तो वहां भोजन किया, तो प्रिय सदन घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे जब भाई जहां जब पहुने जहां पहुनाई हुई, अरे सासरे की पहुना तो अधिक होती है, सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई, कारण क्या था, घर में कौशल्या के लिए ठाकुर जी बचपन से ले बड़े हुए तब तक उनको तो सुलभ थे, अरुंधति जी को तो मौका मिला जब पढ़ने को गए, वहां वशिष्ठ जी महाराज भी रहते थे तब अरुंधति जी को प्यार का भोजन देने का मौका मिला, तो जितना कौशल्या को मिला इतना अरुंधति जी को तो मिला, अरुंधति जी को जितना मिला इतने अपने मित्रों की माताओं को नहीं मिला, और मित्रों की माताओं को मिला इतना सुनैना जी को नहीं मिला, ये दुर्लभ, और सुनैना को जितना मिला इतना सबरी को नहीं मिला, तो इनके लिए दुर्लभ था, भाव इनका बहुत ज्यादा था, समय कम मिलता था, मौका कहाँ मिला, सबरी को तो उम्र भर में एक बार ही मिला, सुनैना जी तो कई बार मिला, तो घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे क्रम से ऐसा कहा, पर सबरी के बात थी मन की हुआ तो विलक्षण थी, वो मूर्ति माधुरी न पाए, तो सबरी इस तरह से भोजन देने लगी, कराने लगी भोजन, तो भगवान बहुत ही राजी, आज के स्वाद भी से बोर हो लक्ष्मण आज के स्वाद मीठे बोलो, आज क्या खाना मीठे है, ऐसे भोजन पाए वहां पर। तो जब भगवान गए तो चरण धोए तो बड़ी प्रसन्न हो गई, राजी हो गई, आश्रम पर भगवान विराजमान हो गए। तो सवरी कहती है महाराज अधम ते अधम अधम अति नारी और तेन मैं मति मंद अधारी, अधम ते अधम अधम अति नारी। अधम ते शुरू कहां से किया ब्राह्मण, तो पहला अधम तो क्षत्रिय शेष रूप ब्राह्मण है, अधम ते अधम वैश्य और अधम शूद्र और जिसमें अति अधम शबर अछूत कहते जिसको, तो अधम ते अधम अधम और अति और उनमें फिर मैं स्त्री शबर जाति में स्त्री और स्त्रियों में भी मैं मतिमंद बिल्कुल मूर्ख अपट जिसका रूप देख करके पति घबरा गया कि डाकना एक खा जाएगी मेरे को ऐसी, तो सबसे मैं नीची हूँ। तो अधम अति अधम अधम अति नारी और तिन मैं मति मंद अघारी मैं तो जीवन। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई, दस बातें बताई। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन और गुण और चतुराई, दस बातें बताई। ये सब के सब ठीक हो, जाति पात गुरु धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुरु चतुराई, भक्ति हीन नरसो हीन केसा के बिन जल बारिश देखे थे, बदल बिना वर्षा के आ जाते हैं ना तो वो खेती को नुकसान करते हैं। वर्षा होती है गर्मी होती है उससे खेती बढ़िया पकती है और बदल आ जाते हैं ठंडे हो जाता है तो खेती बढ़ती नहीं उस ठंड में होती जब रहती रहती, तो बदल होते उसमें जल न हो तो नुकसान होता है। तो भक्ति के बिना ये सब के सब दस गुण हो, भक्ति ही न नरसो है ऐसे कि बिन जल बारिद देखिए ऐसे। कह रघुपति सुनो भामिनी पाता मेरी बात सुनो, मानो एक भक्ति करना था, मैं भक्ति करना था मानता हूँ, भक्ति का समान ये जाति पांति जाति रुचि होती है, जाति में ब्राह्मण, ब्राह्मण में महाराज पंक्ति पावन होते हैं ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों में विशेष, पंक्ति को पवित्र कर दे वो पांति है, जाति पांति पंक्ति पावन, जाति पांति गुण धर्म और बढ़ाई प्रशंसा हो, धन और बल और परिजन और गुण और सतवारी सब खुश होते हैं, पर भक्ति नहीं है तो लवण बिना वो व्यंजन जैसे, बहुत से साग बनाए बढ़िया पर नमक नहीं है, तो इस तरह से बिना भक्ति के बढ़िया बढ़िया चीजें भी नमक ही नहीं होती है, अरे भक्ति होती है तो सब सामग्री आ जाती है। यो माम सुमुरो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, सब भाव से मेरा भजन करता है वो सर्वविद है, वो सर्वज्ञ है सब जानता है, ऐसे भक्ति की महिमा है। तो ऐसे सबरी खुश हो रही है, रघुनाथ जी महाराज भी बहुत खुश हो रही है, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कहा है कि भैया जिस दिन से हम अयोध्या से निकले और वन में बन के फल खाते थे और आज ये जैसे तुम ऐसे बन फल कभी नहीं मिले, खाए ही नहीं, हमारे जंगल में ऐसे फल तो आज ही मिले, ये कोई वृक्ष नहीं है नहीं फल है विलक्षण है, ऐसे खुश हो रहे हैं। तो भक्ति का नाता भगवान विशेष मानते, विराद का वध करके आए ब्राह्मणों की बड़ी महिमा गाई, उसी जगह ये बात आई सबरी की, आधे ताई राम राम ताई राम गति दे तो प्रशंसा करते हुए भगवान तृप्त नहीं होते हैं, भगवान सबरी के सामने नवधा भक्ति कहते हैं। नवधा भक्ति कहूं तो ही पाए, सावधान सुन और धर्म मनवाही। तुम सावधानी सुनो सबरी, नौ प्रकार की भक्ति होती है। सावधान होगो और मन में धारण करो। उपक्रम में तो कहते हैं नौ प्रकार की भक्ति है, तुम धारण करो। ऐसा भक्ति का वर्णन हो चुका है। उसके बाद कहते हैं कि जिसके नौ एक होई, और नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ धोरे। एक भक्ति वाला भी मेरे को प्यारा लगता है। सब प्रकार की भक्ति, भक्ति भी दृढ़ है, ऐसी तेरी भक्ति है। और यहाँ कहते हैं कि नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, ए सावधान सुनो और धरुमन माही। मन में धारण करके आज्ञा भी देते हैं और अंत में कहते हैं सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। तो उपक्रम से काम बैठा नहीं बात में। तो भगवान क्या कहते हैं कि नवधा भक्ति होती है, तुम धारण करो। इसका अर्थ क्या हुआ कि सबरी के भक्त थी भक्ति, पर भक्ति कितने प्रकार की इसका पता नहीं। अब वो कोई व्याख्यान देने वाली नहीं थी। व्याख्यान दे तो याद रखे, हमें कहनी पड़ती है दुनिया में तो बातें याद रखे। भक्ति कितने हो, ज्ञान कैसा होता, कर्म योग कैसा होते, हरि योग, हर लठ योग है, अनाशुद्धि योग है, हठ योग है, कई तरह के योग है। वो सभा में वर्णन करना पड़ता है ना, वो याद रखना पड़ता है। वो कोई व्याख्या तो भजन करने वाली थी, तो उनको ये पता नहीं भक्ति कितने प्रकार की होती। स्वाभाविक भक्ति थी। इस तरह से नौधा भक्ति कहो तो धारण करो, तुम समझो नौ प्रकार की भक्ति होती है। ये नौ प्रकार का पता नहीं था उसको। अब सावधान सुन धर्म अनुमाई, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतम है कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट प्रति ज्ञान, मंत्र जाप मंत्र विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, छठतम शील विरति बहु परमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, आठे सौ मई दग देखे, मोते अधिक संत कर लेके, नवम सरल सब सन सर ही ना, मम भरोस ही हर्षण दीना। ये नौ प्रकार की भक्ति। तो नौ प्रकार की भक्ति भगवान ने बताई, सबरी सुन रही है। वो तो भक्ति का सुने, भक्ति का फल आ गया, भगवान खुद ही घर में। अब भक्ति क्या सुने, मस्त हो रही थी। तो भक्ति का भगवान के यहाँ विशेष आदर है। बात कह रहा था गीता में समग्र रूप गई, तो समग्र रूप के लिए भगवान कहा है, वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, सब वासुदेव परमात्मा है। ऐसा जो भगत है वो दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ ज्ञानी को नहीं कहा, गुणातीत को नहीं कहा, योगी को नहीं कहा, युक्ततम कह दिया, सब कह दिया, पर भक्ति की बात भगवान विशेषता से कहते हैं। ऐसे इसमें साधक भक्तों की और ज्यादा व्यवहार है। ये तो धर्म्या मृत विदम यथोक्तम परिउपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। छोटा बच्चा सबको अच्छा लगता है। तो भगवान कहते हैं मेरे प्रौढ़ तने सब ज्ञानी, और बालक शिव सब दास अमानी, अमानी दास मेरे बच्चे की तरह प्यारा बहुत लगता है। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, सभी सुन रही है। तो वो समग्र भक्ति का वर्णन भगवान ने सातवां अध्याय में किया। सात से बारह तक भक्ति का प्रकरण है, एक से छह तक कर्मयोग है, तेरह से अठारह तक ज्ञान योग है, ये बीच में भक्ति योग है। तो भक्ति योग का वर्णन जितना बीच बीच षटक में हुआ है, इतना कर्मयोग का वर्णन पहले अध्याय पहले षटक में नहीं हुआ, और जितना पहले षटक में कर्मयोग का वर्णन हुआ है, अंतिम षटक में ज्ञान योग का वर्णन इतना नहीं हुआ है। मानो अपने अपने षटकों में भी इतना नहीं जितना मध्य में भक्ति के छह अध्यायों में वर्णन हुआ है। तो भगवान खुश हो जाते हैं। असर से शत्रु मई आसक्त मना पात्र योग निरंजन मजाश्रय मई आसक्त मना भगवान में आसक्ति हो जाए। जो धर्म में आसक्ति है, पदार्थों में, भोगों में, परिवार में जो आसक्ति है वो छूट कर एक मई आसक्त बना, मई आसक्त बना, मेरे में आसक्त वाला मन हो जाए, केवल मेरे में। अरे योग युजन भजन करता रहे मदाश्रय, मेरे में आसक्ति, मेरा ही आश्रय भगवान का ही आश्रय, शरण भगवान जरा मरण मोक्ष है माम आश्रित, वहां भी माम आश्रित यत्न थी। आरंभ में कह रहा योग योजन मदाश्रय वही बात, यहाँ तीनों बातें वहां गई अंत ते बिंदु युक्त चेत था। तो ऐसी श्रद्धा पूर्वक जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरी सबसे बड़ा है। तो भक्ति करने वालों को बताया कि स्वयं आत्मा सुदुर्लभ है, अत्यधिक दुर्लभ है भगत, ऐसे भक्ति की महिमा भगवान करते हैं। तो भक्ति जिसके हृदय में हो भगवान को भस्म न करने दे, न मांसा देती योग न सांख्य धर्म उद्धव, ये सांख्य ज्ञान है धर्म है ये मेरे को भस्म नहीं करते। भक्ति ऐसी है विमोर्जिता उर्जित भक्ति मेरे को भस्म कर देती है। हम भक्त पराधीन हो या स्वतंत्र अमरीश के वहां दुर्वासा ऋषि आए तो दुर्वासा ऋषि महाराज जगह जगह गए श्राप दिया, बड़े कोपी थे तो वे जान कर ऐसा करते फिर ताड़ना करते। अमरीश गए एकादशी का व्रत, एकादशी का व्रत निराहार करता है निर्जय करता है तो उसका पारण होना चाहिए द्वादशी में, बारह द्वादशी बारह तो बारिश उस दिन थोड़ी थी, आगे त्रयोदशी आ रही है और दुर्वासा ने कहा कि तुम भोजन तैयार करो हम मध्यान्ह संध्या कर जाते हैं नदी पर जाते हैं। वहां देरी लगा दी जाते तो दुर्वासा देखते हैं हम क्या करता है मरीज धमकाने पे अच्छी तरह से दुर्वासा भाई धर्म संकट में पड़े महाराज अमरीश तब क्या करें। ब्राह्मणों ने सम्मति दी, वे कहते महाराज मैंने ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है और उनके भोजन किए बिना मैं पारण कैसे करूं, और नहीं करता तो द्वादशी खत्म हो जाती त्रयोदशी आ जाती है। तो ब्राह्मणों ने सम्मति दी कि तुलसी दल लेकर के चरना व्रत ले लो, निर्दल व्रत का इसमें पारण हो जाता है और भोजन किया भी नहीं दोनों बात ठीक हो जाएगी। वो चरना व्रत ले लिया अब महाराज अम्बरीश पर बिगड़े दुर्वासा के ब्राह्मण को निमंत्रण दिया और भोजन पहले पारणा कर लिया ये दंड देने के लायक है। खूब क्रोधी हुए और मार डालो वो हाथ जोड़े खड़ा महाराज भोजन नहीं किया है चरणामृत लिया है केवल पारण करने के लिए एकादशी का व्रत है न चला जाए। नहीं नहीं अब भगत नहीं है तुम, ब्राह्मण को निमंत्रण दिया। ब्राह्मण महाराज चौथा व्रत विश्वविद्यालय था उनके साथ 10,000 ब्राह्मण थे पढ़ने वाले, और इतने ब्राह्मण बुखार रखता है पहले खा लेता भोजन कर लेता पान कर लिया पहले बड़े जोर से गुस्सा बाहर हो गए महाराज क्षमा करो माफ करो कैसे माफ करे जटा उखाड़ी उखाड़ कर कृत्य पैदा करी मार दो इसको ये अब भगत नहीं रहा है ये ब्राह्मणों का तिरस्कार करता है निमंत्रण दे करके पहले पारण कर लेता है कृत्य गई महाराज। तो अम्बरीश के रक्षा में सुदर्शन देता था भगवान का चक्र रक्षा करता था तो कृत्य आई ये मूठ चला जैसे कृत्य होती है बकरार मार खा जाऊंगी तो चक्र चला महाराज उसको खत्म कर दिया कृत्या का तो कृत्य कर दिया। अब चला दुर्वासा गए पूछे दुर्वासा भागे तो मर जाएंगे तो भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास शिव जी के पास ब्रह्मा जी के पास इंद्र के पास भगवान के पास पहुंचा वैकुंठ में तो भगवान ने महाराज हाथ पसार दिए अहम भक्त पराधीन हूँ यह स्वतंत्र ब्राह्मण मैं तो भक्तों में अधीन हूँ कुछ बस नहीं सकता मैं तो पढ़ता हूँ पढ़ा दिए तू इस बात पे मैं रक्षा नहीं कर सकता, उपाय बता सकता हूँ। उपाय यह है वो ना भाग तने जो है अम्बरीश उसमें जाओ, चलो मैं गिरो तो ये सुदर्शन कर सकता रहेगा, नहीं तो मेरे हाथ की बात नहीं। सुदर्शन आपका रहे भगवान साहब उतर गए, मैं तो पराधीन हूँ, हम भक्त पराधीन हो, ये स्वतंत्र साधु फिर ग्रस्त रह रहे हो, भक्त भक्त जनक प्रिय। जैसे सती होती है अपने व्रत तेज के प्रभाव से पति को भस्म कर देती है, ऐसे भक्त मेरे को भस्म कर देते, क्या करो। आए पीछे पड़े कर 12 महीने तक खड़े अम्बरीश, कहते ब्राह्मण दुख पा रहा है, क्या करो, जाकर चरण में गिरते हैं, भाई राम 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 क्या कर रहे हो। सुदर्शन में प्रार्थना करी, महाराज ब्राह्मण का पंच छोड़ो, सुखी तो ये दशा हुई। मैंने तो भक्त भगवान को प्यारे बहुत है, बहुत ज्यादा प्यारे भक्तों के भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है, कारण के वो सर्वस्व अर्पण करते हैं, अपने आप को अर्पण करते, मन को अर्पण करते, बुद्धि को, अहम को, सब भगवान का हो गया, अपनी कोई चीज रही नहीं। तो भगवान अपने से बढ़कर भक्त को देखते हैं, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूं संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान यहाँ भक्त का आदर है विशेष करके, सबरी को कहा ना भक्त ही नर सो है कैसा, बिन जल बारिश देखिए तैसा, भक्ति ही नर अच्छे गुणेगा। भागवत माया है बड़ा ब्राह्मण के 12 गुण है, परंतु भगवान की भक्ति न है तो जो भगवान का भक्त है सबसे तो आधी गरियाल चंडाल है, जाति में नीचा है सब कुछ, परंतु भगवान की भक्ति है तो उस 12 गुण वाले ब्राह्मण से श्रेष्ठ भागवत में दिखते है, कितनी विलक्षण बात है। तो ऐसे भक्त भक्त भगवान के, भगवान भगत के आपस में एक है ये। तस्मिन सज्जने भेदा भावात, नारद सूत्र में लिखा है भगवान के भक्तों में और भगवान में भेद नहीं है, एक ही है, ऐसे भगवान है। तो सज्जनो कहो भगति पथ कवर प्रयासा, बोलो कहो, वो समझ कहो, बोलो बताओ कहो भगति पथ कवर, भगति को कोई प्रयास है, इसमें कोई परिश्रम है, कहो बोलो भाई कहो। भगत पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, जोग है जप है जप है, जप कोई कह दिया जप की बड़ी महिमा कहते हैं, पर भक्ति के अगर जप की भी महिमा नहीं कहते। जोग न जप तप मख उपवासा, यज्ञ भी नहीं तो जप है, जप तो है श्रेष्ठ, परंतु भक्ति के समान नहीं। तो भक्ति क्या है, पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन न दूसरा, अस विचारी पुण्य पुण्य मुने करत राम गुणगान। प्रेम पन्नगारी सुनो प्रेम सम, भगवान में आकर्ष हो गया, भगवान में मन लग गया, भगवान में चित्त खिंच गया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कामे नारी प्यारी जी में और लोभी प्रीति में दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोई राम, ऐसे राम जी मेरे को प्यारे लगे। सज्जनों प्रार्थना कर ली तो यही भगवान से करनी कि हे नाथ आप प्यारे लगो, मेरे को मीठे लगो, भगवान प्यारे लगे। भगवान वो जो प्यार है भीतर का हृदय का, वो भगवान को भस्म कर देता है, किसी तरफ भी हो जाता नहीं। मन द्रौपदी के वो था मन में भाव, तो जहां विचार किया तट आ जाते, जंगल में रहते थे वहां किया कि अपने यज्ञ करें विचार करें तो कृष्ण पूछे भगवान हो तो उनसे सलाह लें, तो भगवान आ गया, मैं तो आ गया, बोलो क्या बात है, बोलो तट आ गया हाजिर जी हूँ। जिसमें नारी के साड़ी खींची गई उस समय भगवान को याद, गोविंद द्वारका वासी कृष्ण गोपी जनप्रिय, हे गोपी जनप्रिय कृष्ण हे द्वारका वासी। भगवान ने कहते हैं द्वारका वासी का ईश्वर द्वारका जाकर आना पड़ा तो देरी लग गई, तो यही आ जाता है, तूने द्वारका वासी को बुलाया ना तो द्वारका जाकर आना पड़ता, देरी नहीं लगती भगवान की। समझ ताशा आविर्भूत सौरी स्मय मान मुखाम बोझ गोपिका है गाने लगी गोपी की दह तीर्थ गम जन्म इंदिरा ताशाम उसके बीच में भगवान प्रकट हो गए गोपिका बैठी बीच में तो भगवान आना थोड़ी है हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम तक प्रकट हो मैं जाना घट घट व्यापक राम जी अति नैदा नहीं दूर कपट तद्र चित से भजे तो सन्मुख हो जरूर तो सीधा सगल सुभा बन मन कुटलाई या ये बात कहता नहीं कहो भगति पथ कौन प्रयासा वहां कहता है सरल स्वभाव मैंने कुटता है सीधा सरल स्वभाव है कुटलता नहीं है सीधा यथा लाभ संतोष सदाई भगवान गुण गाते मस्त रहते सरलता भगवान को सरलता अच्छी रहती निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट थल छत्र भावा ये कपट सब चित्र चतुराय करते नहीं ये मेरे को अच्छी नहीं लगी सीधा सीधा सरल भाव से पुकारे गौवा पुकारती है तो महाराज भगवान आ जाते खगा मृगा मृग है पक्षी है वृक्ष है उनका भगवान आदर करते जो भक्त है बड़े बड़े ऋषि यज्ञ में बुलाते नहीं आते गाया जांच हुंकार करती है और भगवान आ जाते तो क्या है कि वो फ्री है ऐसे